This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Hindi, May 2023.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale d'Hindi, May 2023.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva, de Hindi, mayo 2023.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
पाठांश क इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए अब आपके पास 4 मिनट हैं।
अभी आप नितिन और कमला मौसी के बीच समुदाय सेवा पर एक वार्ता सुनेंगे।
अरे सुनो तो लड़कों, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो?
नमस्ते मौसी, हम लोग तो समुदाय सेवा करके लौट रहे हैं।
समुदाय सेवा, ये तो अच्छी बात है, मगर विस्तार से बताओ तो जानू।
आज हमने अपने गांव के लोगों को स्वच्छता के फायदे के बारे में जानकारी दी है।
मैंने भी रेडियो पर सुना है और स्वच्छता अभियान के बारे में जानती हूँ।
वाह वाह मौसी, हमें बताओ तो क्या जानती हो?
अभी तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 भी शुरू है। इस बार शहरों को भी गांव के संग सुधारा जा रहा है।
बिल्कुल सही कहा आपने, हम आज नुक्कड़ नाटक के जरिए गांव में सफाई कैसे रखे समझाया है।
हाँ हाँ, ये जरूरी है। मैं भी जहाँ तक हो सके गांव की औरतों को रसोई घर में सफाई रखने और खाते पीते समय स्वच्छता पर ध्यान रखें समझाती हूँ, और बच्चों से भी अपने आसपास सफाई बनाए रखने के लिए कहती हूँ।
हाँ हाँ, नाटक में भी हमने कूड़ा कूड़ेदान में डाले। व्यक्तिगत स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करे और शौचालय का उपयोग करे की शिक्षा दी है।
सच में, अगर लोग अपनी मानसिकता को बदल कर इसका अनुकरण करेंगे तो गांव में स्वर्ग बसेगा।
बिल्कुल,
अब तो हमें गांव में बहती नदी को दूषित होने से बचाना होगा और पर्यावरण को स्वच्छ रखना होगा।
जी मौसी, क्या आप भी हमारे साथ मिलकर हमारी मदद करेंगी?
जरूर करूंगी, मुझे बहुत खुशी होगी। जीते रहो।
इस रिकॉर्डिंग को दूसरी और अंतिम बार सुनने से पहले अब आपके पास 2 मिनट हैं।
अरे सुनो तो लड़कों, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो?
नमस्ते मौसी, हम लोग तो समुदाय सेवा करके लौट रहे हैं।
समुदाय सेवा, ये तो अच्छी बात है, मगर विस्तार से बताओ तो जानू।
आज हमने अपने गांव के लोगों को स्वच्छता के फायदे के बारे में जानकारी दी है।
मैंने भी रेडियो पर सुना है और स्वच्छता अभियान के बारे में जानती हूँ।
वाह वाह मौसी, हमें बताओ तो क्या जानती हो?
अभी तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 भी शुरू है। इस बार शहरों को भी गांव के संग सुधारा जा रहा है।
बिल्कुल सही कहा आपने। हम आज नुक्कड़ नाटक के जरिए गांव में सफाई कैसे रखे समझाया है।
हाँ हाँ, ये जरूरी है। मैं भी जहाँ तक हो सके गांव की औरतों को रसोई घर में सफाई रखने और खाते पीते समय स्वच्छता पर ध्यान रखें समझाती हूँ, और बच्चों से भी अपने आसपास सफाई बनाए रखने के लिए कहती हूँ।
हाँ हाँ, नाटक में भी हमने कूड़ा कूड़ेदान में डाले। व्यक्तिगत स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करे और शौचालय का उपयोग करे की शिक्षा दी है।
सच में, अगर लोग अपनी मानसिकता को बदल कर इसका अनुकरण करेंगे तो गांव में स्वर्ग बसेगा।
बिल्कुल।
अब तो हमें गांव में बहती नदी को दूषित होने से बचाना होगा और पर्यावरण को स्वच्छ रखना होगा।
जी मौसी, क्या आप भी हमारे साथ मिलकर हमारी मदद करेंगी?
जरूर करूंगी, मुझे बहुत खुशी होगी। जीते रहो।
इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अब आपके पास 2 मिनट हैं।
पाठांश ख। इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए अब आपके पास 4 मिनट हैं।
अभी आप मोना और उसके नाना जी के बीच चूड़ियों के विषय पर हुई बातचीत को सुनेंगे।
मोना बेटा, जरा जल्दी करो वरना देर हो जाएगी, शादी का मुहूर्त निकल जाएगा।
जी नानू, बस अभी आई। ओह, मुझसे ये साड़ी नहीं संभलती।
अरे वाह मोना, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अगर तुम कुछ गहने पहन लेती तो सोने पर सुहागा होता।
नहीं नहीं नानू, साड़ी पहले ही बहुत सुंदर है तो मैं बस झुमके पहन लेती हूँ।
मोना, शादी के मंडप की रौनक और अपने भारतीय विवाह के रीति रिवाजों को देख तुम्हें बड़ा मजा आएगा।
मैं तो दुल्हन का श्रृंगार, जैसे माथे पर बिंदिया, गले में हार और हाथ में खन खन करती चूड़ियों की आवाज सुनने के लिए ललायत हूँ।
मोना, भारत में कुमारियां एवं नारियां सादी चमकीली चूड़ियों को बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से पहनकर अपने कलाई की शोभा बढ़ाती हैं।
हाँ नानू, हाथों में चूड़ियां सचमुच बहुत सुंदर लगती हैं। अब मैं तैयार हूँ, चलें नाना जी। नानू, क्या यहाँ हर उत्सव पर चूड़ियां सबसे ज्यादा बिकती हैं?
हाँ, सावन के महीने में गलियों में मनिहारिन आवाज लगाकर रंग बिरंगी चूड़ियां बेचती हैं और स्त्रियां प्रफुल्लित हो मन भावनी चूड़ियां पहनती हैं। धार्मिक रूप से चूड़ियां सुहाग की निशानी है।
इतना कुछ है इन चूड़ियों के पीछे।
और सुनो, सावन में स्त्रियां लाल और हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं। लाल रंग प्रेम का सूचक है तो हरा रंग प्रकृति का, और ये हरा रंग वैवाहिक जीवन में खुशहाली भी लाता है। समझी मोना?
नानू, चूड़ियां पहनने का वैज्ञानिक लाभ भी है। जैसे सोने चांदी की धातु से बनी चूड़ियों से महिलाओं को बल मिलता है, कांच की चूड़ियों की खनक से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
शाबाश मोना, आजकल के बच्चे वैज्ञानिक बातों में अधिक रुचि रखते हैं, मुझे तुम पर गर्व है।
इस रिकॉर्डिंग को दूसरी और अंतिम बार सुनने से पहले अब आपके पास 2 मिनट हैं।
मोना बेटा, जरा जल्दी करो वरना देर हो जाएगी, शादी का मुहूर्त निकल जाएगा।
जी नानू, बस अभी आई। ओह, मुझसे ये साड़ी नहीं संभलती।
अरे वाह मोना, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अगर तुम कुछ गहने पहन लेती तो सोने पर सुहागा होता।
नहीं नहीं नानू, साड़ी पहले ही बहुत सुंदर है तो मैं बस झूम के पहन लेती हूँ।
मोना, शादी के मंडप की रौनक और अपने भारतीय विवाह के रीति रिवाजों को देख तुम्हें बड़ा मजा आएगा।
मैं तो दुल्हन का श्रृंगार, जैसे माथे पर बिंदिया, गले में हार और हाथ में खन खन करती चूड़ियों की आवाज सुनने के लिए ललायत हूँ।
मोना, भारत में कुमारियां एवं नारियां सादी चमकीली चूड़ियों को बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से पहनकर अपने कलाई की शोभा बढ़ाती हैं।
हाँ नानू, हाथों में चूड़ियां सचमुच बहुत सुंदर लगती हैं। अब मैं तैयार हूँ, चले नाना जी। नानू, क्या यहाँ हर उत्सव पर चूड़ियाँ सबसे ज्यादा बिकती हैं?
हाँ, सावन के महीने में गलियों में मनिहारिन आवाज लगाकर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बेचती हैं और स्त्रियाँ प्रफुल्लित हो मन भावनी चूड़ियाँ पहनती हैं। धार्मिक रूप से चूड़ियाँ सुहाग की निशानी है।
इतना कुछ है इन चूड़ियों के पीछे।
और सुनो, सावन में स्त्रियां लाल और हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं। लाल रंग प्रेम का सूचक है तो हरा रंग प्रकृति का, और ये हरा रंग वैवाहिक जीवन में खुशहाली भी लाता है। समझी मोना?
नानू, चूड़ियां पहनने का वैज्ञानिक लाभ भी है। जैसे सोने चांदी की धातु से बनी चूड़ियों से महिलाओं को बल मिलता है, कांच की चूड़ियों की खनक से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
शाबाश मोना, आजकल के बच्चे वैज्ञानिक बातों में अधिक रुचि रखते हैं, मुझे तुम पर गर्व है।
इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अब आपके पास 2 मिनट हैं।
पाठांश ग। इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए अब आपके पास 4 मिनट हैं।
अब आप रुक्मणी दास जी का भाषण सुनेंगे कि वो कैसे शिक्षा प्राप्त कर अपने पैरों पर खड़ी हुई।
जागृति मंच को मेरा शत शत नमन। मेरा नाम रुक्मणी दास है। मैं 65 वर्ष की हूँ। श्रेष्ठ समाज सेवी का सम्मान पाकर मैं फूली नहीं समा रही हूँ। इस मंच को अपना आभार प्रकट कर अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। आज जीवन यापन संघर्षपूर्ण है। इस तकनीकी युग में अगर शिक्षित ना हो तो साधारण से साधारण काम कर पाना मुश्किल है। मैं पहले अनपढ़ थी, पर अब साक्षर हूँ। इसका श्रेय मेरी बेटी, जो अब एक वकील है, को जाता है। मैंने कठिन परिस्थितियों में, जैसे पैसों का अभाव, रहने का कोई स्थायी ठिकाना न होना आदि में अपनी बेटी को पढ़ाया। मेरी बेटी ने भी कमर तोड़ मेहनत कर पढ़ाई की और अव्वल अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुई। मेरी बेटी मुझे प्रोत्साहित कर शिक्षित करने लगी। शुरुआती दौर मेरे लिए कठिन था, क्योंकि मैं औपचारिक शिक्षा की आयु पार कर चुकी थी। परंतु मैंने हिम्मत ना हारी। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जाकर शिक्षा प्राप्त की। मुझे ज्ञात है कि आज के युग में बौद्धिक कौशल विकास जरूरी है। ये जान मैंने तन मन लगाकर कठोर परिश्रम कर विद्योपार्जन किया। इस दौरान मेरी समवर्षीय सहेलियां फालतू गपशप में मग्न रहतीं और कभी कभार मेरा मजाक भी उड़ातीं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने मेरे मनोबल को कम करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन मैं अविचल अपनी बेटी से प्रोत्साहन पा अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती गई। साक्षर होने पर मेरी कार्यक्षमता बढ़ती गई। मैंने अपना व्यापार खोला, बैंक का काम स्वयं करने लगी। मेरी पुरानी सहेलियां अब मुझसे अपने लिए मदद मांगती हैं और मैं दिल खोल कर उनकी मदद करती हूँ। अब उनको ये बात समझ में आ गई थी कि अशिक्षित रहकर कोई भी समय के साथ नहीं चल सकता। गांव में लोग अब मेरा आदर करते हैं, कई विषय पर सलाह परामर्श लेते हैं। मैं समाज सेविका हूँ और गांव की सभी अनपढ़ महिलाओं और बच्चों को विद्योपार्जन के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। मैं प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में भी पढ़ाती हूँ। लोगों के छिपे कौशल को पहचान उन्हें अपने अनुभव से निखारती हूँ। मेरे विचार सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इस रिकॉर्डिंग को दूसरी और अंतिम बार सुनने से पहले अब आपके पास 2 मिनट हैं।
जागृति मंच को मेरा शत शत नमन। मेरा नाम रुक्मणी दास है। मैं 65 वर्ष की हूँ। श्रेष्ठ समाज सेवी का सम्मान पाकर मैं फूली नहीं समा रही हूँ। इस मंच को अपना आभार प्रकट कर अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। आज जीवन यापन संघर्षपूर्ण है। इस तकनीकी युग में अगर शिक्षित ना हो तो साधारण से साधारण काम कर पाना मुश्किल है। मैं पहले अनपढ़ थी, पर अब साक्षर हूँ। इसका श्रेय मेरी बेटी, जो अब एक वकील है, को जाता है। मैंने कठिन परिस्थितियों में, जैसे पैसों का अभाव, रहने का कोई स्थायी ठिकाना न होना आदि में अपनी बेटी को पढ़ाया। मेरी बेटी ने भी कमर तोड़ मेहनत कर पढ़ाई की और अव्वल अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुई। मेरी बेटी मुझे प्रोत्साहित कर शिक्षित करने लगी। शुरुआती दौर मेरे लिए कठिन था, क्योंकि मैं औपचारिक शिक्षा की आयु पार कर चुकी थी। परंतु मैंने हिम्मत ना हारी। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जाकर शिक्षा प्राप्त की। मुझे ज्ञात है कि आज के युग में बौद्धिक कौशल विकास जरूरी है। ये जान मैंने तन मन लगाकर कठोर परिश्रम कर विद्योपार्जन किया। इस दौरान मेरी समवर्षीय सहेलियां फालतू गपशप में मग्न रहती और कभी कभार मेरा मजाक भी उड़ाती। कई बार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने मेरे मनोबल को कम करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन मैं अविचल अपनी बेटी से प्रोत्साहन पा अपने उद्देश्य की ओर बढ़ती गई। साक्षर होने पर मेरी कार्य क्षमता बढ़ती गई। मैंने अपना व्यापार खोला, बैंक का काम स्वयं करने लगी। मेरी पुरानी सहेलियां अब मुझसे अपने लिए मदद मांगती हैं और मैं दिल खोल कर उनकी मदद करती हूँ। अब उनको ये बात समझ में आ गई थी कि अशिक्षित रहकर कोई भी समय के साथ नहीं चल सकता। गांव में लोग अब मेरा आदर करते हैं, कई विषय पर सलाह परामर्श लेते हैं। मैं समाज सेविका हूँ और गांव की सभी अनपढ़ महिलाओं और बच्चों को विद्योपार्जन के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। मैं प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में भी पढ़ाती हूँ। लोगों के छिपे कौशल को पहचान उन्हें अपने अनुभव से निखारती हूँ। मेरे विचार सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अब आपके पास शेष समय है।